Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Svetashvatara Upanishad, Chapter 5 and 6, presented by Swami Sri Atmananda Giriji. Thank you. Om Namah Shivaya.
जाने के जब दिमाग में आई सोचे कि जाना चाहिए, शरीर बुढ़ापा आ गया, शरीर काम नहीं कर रहा है. लेव जी, अब हम यदि कहें कि तुमको इसी शरीर में ऐसे शरीर ऐसी हालत में ले जाएंगे, चलो, तो बोले महाराज फिर पैसा नहीं है, धीरस्थ सत्रह, मर गए तो मर गए, मरना तो यहां भी मरना है तो वहां ही मरना है, क्या फर्क पड़ेगा. अधीरता न मई अति. तुम क्या बम्बई में रहकर नहीं मरेंगे, कोई तुम्हारे बाप बता दे मां. तो हमने एक को कहा कि चलो देवघाट रहेंगे और तुमको वेदांत तो सुनाते हैं. नहीं महाराज, पिताजी का तबीयत ठीक नहीं है, कुछ हो गया तो. ले जी, क्या मतलब हो गया? अरे भाई, कुछ हो गया तो, यहां हो गया तो तू क्या करेगा? बोले यहां हो गया तो तुरंत हॉस्पिटल तो ले जा पाएंगे ना, कि हॉस्पिटल ले जाकर सब सुरक्षित आते हैं, परफेक्ट कंप्लीट होकर आ जाते हैं हॉस्पिटल से, गारंटी है. यही मोहा है. अब मरने की बात तो यहां भी मरते हैं, वहां भी मरते हैं, हॉस्पिटल में. हम तो ये कहते हैं सबसे ज्यादा हॉस्पिटल में ही मरते हैं. मरते हैं कि नहीं डॉक्टर साहब? मैक्सिमम पे मरने वाले हॉस्पिटल में ही मरते हैं. अधीर लोग इस तरह मोहित हो जाते हैं. तथा देहांतर प्राप्ति, इसी तरह दूसरा देह प्राप्त हो जाएगा. क्यों चिंतित होते हो? हाय महाराज, दांत दुख रहा, दांत गिरने लग गए, क्या करें? गिरते तो गिरने दो, खत्म हो गई. पर गिर गया तो फिर चबा नहीं पाएंगे. अरे बाबा, जब संसार में आए थे दांत नहीं थे, जब जाओ यहां से तो दांत, बिना दांत के जाओ, खत्म हो गई है कि नहीं, बोलो. भगवान ने तो यही कहा है, इसीलिए मरने से पहले दांत गिराने का नियम बनाया था भगवान ने. और तुम बना बना के लगाते हो तो दांत गिरा के जाते नहीं हो. धीरस्तत्र न मुह्यति. हाँ, वही धीर पुरुष क्या करते हैं? तम आत्मस्तम ये अनुपश्यंति धीरा, तेसाम शांति शाश्वती. उसी को ही शाश्वत शांति की प्राप्ति होती है, अन्य को नहीं. न इतर ऐसा तथा च शिवधर्मोत्तरे. योगिनाम आत्मनि स्थितः शिवम आत्मनि पश्यन्ति प्रतिमासु न योगिनः. लेव जी, मूर्ति का खंडन कर दिया है. योगिनः शिवम आत्मनि पश्यन्ति. ज्ञानी लोग, योगी लोग शिव को, परमात्मा को आत्मस्थम, आत्मा में देखते हैं, अपने में देखते हैं. आत्मा माने अपने में देखते हैं. वो ना प्रतिमासु, वो पत्थरों से बने हुए प्रतिमाओं में नहीं देखते. अब यही विडंबना, पत्थरों से बने प्रतिमा में भगवान देखने वाला व्यक्ति शरीरों में भगवान नहीं देखता है. क्या विडंबना है हमारी संस्कृति में, है? क्या विडंबना है. प्रतिमा में भगवान देखने वाला व्यक्ति आत्मा में भगवान नहीं देखता है, शरीर में भगवान नहीं देखता है, और काटता रहता है भगवान को खुश करने के लिए. देव जी, बलि चढ़ाते हैं कि नहीं? हेरा मूर्ख, कैसे है बलि चढ़ाते हैं? पत्थर के प्रतिमा में भगवान देखने वाला वह मूर्ख जिंदा जीवन चलने वाला, चैतन्य स्वरूप के रूप में चलने वाला, वो जीवन में परमात्मा नहीं देख रहा है, और पत्थर में परमात्मा जो देखता है उसको खुश करने के लिए जीवित परमात्मा को, चलता फिरता परमात्मा को काट कर उसके रक्त जो है उसमें लगाता है, बलि चढ़ाते हैं, मूर्ख हैं। क्या सुंदर जवाब दिया ऐसे मूर्खों को। लेकिन योगी न कि भोगी न, वो पत्थर में भगवान देखकर बलि चढ़ाने वाले योगी नहीं है, वो भोगी है, समझ रहे ना। तो भोगी ही पत्थर में भगवान देखता है, क्योंकि उसको मांस खाना है, इसलिए चलो भगवान के नाम सर मांस खाओ, बलि चढ़ाओ। हमने किसको कहा कि नहीं नहीं भाई तुम लोग खाना नहीं चाहिए मांस, बोले नहीं प्रसाद तो देवी को भोग लगाया हुआ प्रसाद तो खाना चाहिए। ले जी कैसा मूर्ख है भाई, कैसा मूर्ख है। शिवमात्मनि पश्यन्ति प्रतिमासु न योगिनः। फिर कहां देखते हैं वो लोग, प्रतिमा में नहीं देखते हैं तो कहां देखते हैं, आत्मनि शिवम पश्यन्ति आत्मस्थम य परित्यज्य बहिस्थम यजते शिवम। जो मूर्ख व्यक्ति आत्मस्थम शिवम परित्यज्य, अपने स्वरूप में अवस्थित उस शिव का निरादर करके, उसका उपेक्षा करके, वही प्रतिमा आदियों में शिव को खोजता है। आत्मस्थम य परित्यज्य बहिस्थम यजते शिवम, बाहर पत्थरों में शिव बुद्धि करके उसकी पूजा करता है। तो वो कैसा है, वो हस्तस्थम पिंडम उत्सृज्य लीहात कर्पूरम आत्मनः लीयात कुरपरस कुरपरम आत्मना। मान लो हाथ में बढ़िया जो खीर था, केसर काजू बादाम, वो खीर बढ़िया था, हाथ में अंजलि में दिया था, उसको फेंक दिया, पूरे पूरे को फेंक दिया और फिर हाथ चाटने लग गए। अरे भाई हाथ ही चाटना था तो वो क्यों फेंका, जो खाकर पेट भरा जा सकता है उसको तो फेंका, और जो हाथ में थोड़ा बहुत लगा था उसको चाटने लगता है। ऐसे ही है मूर्ख, ऐसा नहीं है कि प्रतिमा में शिव नहीं है और प्रतिमा में शिव की पूजा करना बेकार है, ऐसा नहीं कह रहे हैं वो। जैसे हाथ में रखे हुए भोजन बढ़िया खीर उत्सृज्य, पूरा का पूरा तो फेंक दिया और चाट रहा है हाथ। लोग कहते हैं ना, दिन में गुण दे तो खाता नहीं है, रात को उठकर कोलू चाटता है ना। दिन में गुण दिया ले खा ले, नहीं खाता है, अंदर तो है गुण खाने की वासना, बाहर तो त्यागी दिखाना पड़ा कि नहीं, ना ना। तो वो वासना पूरी करने के लिए क्या करने लगा, सब सो गए तो कोलू चाटने लग गए वो। अरे मूर्ख, जब कोलू ही चाटनी थी तो दिन में इतना बढ़िया गुण दिया था तो वही खा लेता सबके सामने, ऐसा क्यों किया। बोले दिन में गुण खाता तो इज्जत जाती, क्यों, बोले ये तो बड़ा लोभी है, लोभी है, देख लो पैसे से खरीद के खा नहीं सकता है और आ गया आपको गुण मांगने के लिए, लोभी कहेंगे वो। अब रात को सब सोए होते हैं, कोलू चाटेंगे और क्या, कोई बदनाम थोड़ी करेगा। अरे भाई रात को तू कोलू चाट रहा है, उसको भी तो देखने वाले कोई ना कोई होंगे ना बेटा। ये देख लो, ये क्या सुंदर प्रमाण ला के रख दिया। शिवम आत्मनि पश्यन्ति प्रतिमासु न योगिनः आत्मस्थम यह परित्यज्य वजिस्थम यजते शिवम। उनकी हालत कैसी है, हस्तस्थम पिंडम मुसृज्य लिहात कुरपरम आत्मनः सर्वत्रावस्थितं शांतं न पश्यन्तीह शंकरं ज्ञानचक्षुर्विहीनत्वात् अंधः सूर्यं यथोदितम्। सर्वत्र अवस्थित उस शिव को नहीं देखता है क्योंकि उसके पास सर्वत्र अवस्थित सूर्य को माने शिव को देखने की दृष्टि नहीं है। परसों का प्रवचन है ना, टॉपिक्स क्या दिया है, ये आएगा सब उसी परसों आएगा ये प्रमाण। त्रिनेत्रम, तीन नेत्रों की चर्चा होगी, कौन से नेत्र से कौन से आंख से कौन सी चीज दिखता है, किसको देखने के लिए कौन सा आंख चाहिए, कौन से आंख से कौन सी वस्तु दिखेंगे, इसकी चर्चा होगी तो उसमें ये प्रसंग आएगा। सर्वत्र अवस्थितम शांतम न पश्यंती इह शंकरम ज्ञान चक्षुर विहीनत्वा, क्यों उनके पास ज्ञान चक्षु है ही नहीं तो कैसे देखेंगे सर्वत्र अवस्थित शिव को, ज्ञान चक्षु हो तब न दिखेगा उसको। अंधा सूर्यम यथोदितम, जैसे चर्म चक्षु विहीन व्यक्ति, ध्यान देना कौन सा शब्द प्रयोग किया हमने, चर्म चक्षु विहीन व्यक्ति साक्षात पूर्व दिशा से उदित हुए हुए प्रचंड सूर्य को नहीं देखता, नहीं देख पाता है, उसी तरह ज्ञान चक्षु विहीन व्यक्ति सर्वत्र अवस्थितम शांतम शिवम को, शिव को नहीं देख सकता है ज्ञान चक्षु विहीन व्यक्ति। उत्क्रामंतम स्थितम वापी भुंजानम वा गुणान्वितम विमूढ़ा नानुपश्यंती पश्यंती ज्ञान चक्षु से। परसों का सब्जेक्ट आज ही बोल दिया हमने, परसों का सब्जेक्ट आज ही बोल दिया है, ये सब आएगा परसों। या पश्येत सर्वगम शांतम तस्याध्यात्मस्थितः शिवः आत्मस्थम ये न पश्यन्ति तीर्थे मार्गन्ति ते शिवम्। लेव जी, अरे सबसे बड़ा तीर्थ तुम जहां हो वहीं है, आत्मस्थ तीर्थ का परित्याग करके या पश्येत सर्वगम शांतम तस्याध्यात्म स्थितः शिव आत्मस्थम ये न पश्यन्ति। इसी इतना सुंदर तीर्थ में उस शिव को न देखकर तीर्थे मार्गंतिते शिवम, और तीर्थ तीर्थ में घूमता रहता है किसके लिए, बोले शिव दर्शन करने के लिए। शंकराचार्य जी ने कहा है ना, काश्याम ही काशते काशी, काशी सर्व प्रकाशिता, सा काशी सेविता ये न तेन सेवी ही काशिका। लोग पहले के जमाने में काशीवास करने की परंपरा थी, जीवन के उत्तरार्ध काल में, उत्तर काल में घर का सब व्यवहार अपने बहु बटो को जिम्मा लगा दिया, वानप्रस्थी हो गए, और ये मान्यता थी काश्याम मरणान मुक्ति, इस पर पूरी विश्वास थी कि मरते समय काशी में मरनी चाहिए और काशी मरने वाला सीधा मुक्त हो जाता है तो मोक्षकामी। तो सब घर व्यवहार आदि बहु बेटों को अर्पण करके वह काशी में जाकर निवास करते थे। काशी में बड़ी भीड़ होती थी, तो शंकराचार्य जी ने बड़ा सुंदर काशीवास का एक फॉर्मूला तैयार कर दिया। काशी माने क्या, काशी माने संस्कृत भाषा में काशी शब्द का अर्थ होता है प्रकाशी, काश्री दीप्तौ धातु से काशी बनता है, ये संस्कृत व्याकरण का नियम है। काश्री धातु दीप्ति अर्थ में, प्रकाश अर्थ में, तो काशी का अर्थ होता है प्रकाश, प्रकाशिका, काश्याम ही काशते काशी, काशी सर्व प्रकाशिका, जो सर्व प्रकाशिका काशी का सेवन किया है वही वास्तव में काशी वास करता है। और सर्व प्रकाशिका क्या है? ब्रह्मज्ञान। ये देख लो, सर्व प्रकाशिका क्या है? एकम विज्ञाते सति, याद है नहीं कि नहीं? एकम विज्ञाते सति सर्वमिदं विज्ञातं भवति। उस एक को जान लेने पर सब कुछ जाना गया, ज्ञात हो गया। तो इसका मतलब क्या? उस एक को जानने वाली विद्या ब्रह्म विद्या, आत्मज्ञान, आत्मा को जान लिया। तो आत्मज्ञान से तो सब कुछ ज्ञात हो गए कि नहीं? एकम विज्ञाते सति सर्वमिदं विज्ञातं भवति, सर्वज्ञो भवति, सर्वविद् भवति, सर्वज्ञो भवति। तो काशी का अर्थ क्या हुआ? सर्व प्रकाशिका, सभी को प्रकाशित करने वाली जो ब्रह्म विद्या है वही वास्तव में काशी है। और उस ब्रह्म विद्या का जिसने सेवन किया है तो उसने काशीवास किया है कि नहीं, बोलो? सर्ग प्रकाशित है, काशीवास कर लिया, वही व्यक्ति वास्तव में काशीवास करता है जिसने अपने हृदय में सर्व प्रकाशिका काश्री यानी ज्ञान को प्राप्त कर लिया। तब तो वो काशीवास रहकर मरना उसका सार्थक है। अब सर्व प्रकाशिका जो ब्रह्म ज्ञान है, आत्मज्ञान, तो वो तो है ही नहीं और काशी में जाके मरने के लिए बैठ गए, तो वो भूताकाश है। हाँ। और ये आत्मा काशी, वो भूत काशी, ये भौतिक काशी, ये आध्यात्म काशी। शंकराचार्य जी इस काशी की बात करने में जोर देते थे। कौन सी काशी वास? सर्व प्रकाशिका, सर्व प्रकाशिका काशी वास करने में जोर देते थे। हाँ। यानी आत्मज्ञान के लिए ही जोर देते थे। आत्मज्ञान तुम की आत्मज्ञान की साधना में तुम लगे हो तो तुमको ये भूताकाश, ये भौतिक आकाश माने काशी में जाने की जरूरत नहीं है। काश्याम ही काशते काशी, काशी सर्व प्रकाशिका सा काशी सेविता येन तेन सेवी ही काशिका। वास्तविक काशी वास्तव उसी ने किया है जिसने सर्व प्रकाशिका ब्रह्म विद्या का सेवन किया है। और काशी इतनी बढ़िया प्रकाशिका काशी यहां है उसका तो परित्याग कर रहा है। अब शिव को खोजते हुए जाता है वह। य पश्यत सर्वगम शांतम तस्याध्यात्म स्थिति सीता शिव आत्मस्थम ये न पश्यन्ति तीर्थे मार्गन्ति ते शिवम। आत्मस्थम तीर्थम उत्सृज्य, ले कैसी मूर्खता। शंकराचार्य जी का एक और श्लोक है। काशी छत्रम शरीरम त्रिभुवन जठरे व्यापिनी ज्ञान गंगा। ले जी, काशी छत्रम शरीरम, क्योंकि काशी में विश्वनाथ निवास करते हैं और काशी में गंगा जी है, यही ना? काशी का महत्व क्या है? काशी में गंगा जी है, गंगा स्नान करने को मिलेगा, और काशी में शिव विश्वनाथ निवास करते हैं, रोज दर्शन करने को मिलेगा। अरे मूर्खो, शंकराचार्य जी बोले, अरे मूर्खो, काशी तो यही शरीर है। ये शरीर कैसे काशी है महाराज? यहां गंगा जी कहां है? यहां के गंगा जी का जल तो मुरारी बापू ही, मुरारी देसाई ही पीते थे। इस गंगा के, इस काशी के गंगा के जल तो मुरारी देसाई ही पीते थे भाई। शंकराचार्य जी कहते काशी छत्रम शरीरम त्रिभुवन जठरे, क्योंकि ये व्यापिनी ज्ञान गंगा। ज्ञान गंगा तो इसी में बगने बहने वाली है। ज्ञान गंगा और जगह नहीं बहेगी, इसी में बहने वाली है। यहां ज्ञान गंगा देखो, क्या सबके भी ज्ञान गंगा बह रही है। ऐसी काशी की क्या उपेक्षा करोगे तुम? क्यों उपेक्षा करते हो? काशी छत्रम शरीरम त्रिभुवन जठरे व्यापिनी ज्ञान गंगा विश्वेशोयम तुरीया। देव जी, साक्षात तुरीय अवस्था की अनुभूति यही होने वाला होने के कारण तो विश्वनाथ तो यही है। आत्मा तो हम गिरिजा मति सहचरा, विश्वनाथ तो यही तो बैठे। तो इतना बढ़िया काशी छोड़कर कौन से काशी क्षेत्र के तीर्थ यात्रा करते हो तुम? यहां वही तो कह रहे हैं, आत्मसंस्थम तीर्थम उत्सृज्य, इतना बढ़िया। भक्ति श्रद्धा गयेयम, शंकराचार्य कहते हैं भक्ति और श्रद्धा यही त्रिवेणी संगम है, यही गया है। क्या सुंदर है, उस काशी की उपेक्षा नहीं करना। आत्मस्थम तीर्थमुत्सृज्य बहिर्तीर्थादियो ब्रजेत, बाहर के भौतिक तीर्थों में जो विचरण करता है वे क्या करता है वांग मान लो, करस्तम स महारत्नम त्यक्त्वा काचम विमार्गति। मान लो वो हाथ में आया हुआ बढ़िया कोई नूर हीरा को छोड़कर कांच के टुकड़ों को खोजने के लिए जाता है। अब तुम्हारे कांच के टुकड़ों पर हीरा बुद्धि करके विश्वास करने पर वो कांच हीरे के मूल्य में बिकेगा वो है? और वास्तव में हीरा तो तुम छोड़ ही रहे हो, हाथ में आया हुआ हीरा तो छोड़ दिया। आत्मस्तम तीर्थम उत्सृज्य बहिस्तीर्थादियो ब्रजेत, तुम लोगों के लिए बढ़िया हो गया। कभी का आत्मानंद गिरी या कोई महात्मा तुम्हें कहे कि चलो हरिद्वार गंगा नहा के आए, तो ये श्लोक बोल देना फट उस महात्मा के सामने, उसकी बोलती बंद हो जाएगी। समझिए कि नहीं, कोई महात्मा कहे कि चलो पशुपतिनाथ दर्शन करें नेपाल है, केदारनाथ बद्री केदार की यात्रा करो, जगन्नाथ रामेश्वर की यात्रा करो, चलो उसको ये श्लोक सुना देना, मुझे ही सुना देना, मैं यदि नेपाल बुलाऊंगा तुम्हें पशुपतिनाथ के दर्शन करने के लिए तो ये सुना देना। आत्मस्तम तीर्थम उत्सृज्य बहिर्तीर्थादियो ब्रजेत करस्थम महारत्नम स महारत्नम त्यक्त्वा कांचम विमार्गति। विमार्गण माने खोजना, कांच को खोज रहा है। और आगे क्या कहेंगे कल रहेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।